अनिवार्य ओपनिंग नरेशन। एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में जा रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पूरे दौर को, एक समाज को अपने अंदर समेटे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं नजीब महफूज के मशहूर उपन्यास पैलेस वॉक की, अरबी में बेन अल कसराइन, मतलब दो महलों के बीच।
बिल्कुल, नजीब महफूज, जिन्हें आधुनिक अरबी साहित्य का कह सकते हैं पितामह माना जाता है और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो अकेले अरबी लेखक हैं। 1988 में मिला था उन्हें।
हाँ, और काहिरा शहर तो जैसे उनके उपन्यासों का एक किरदार ही बन गया है।
सही कहा, और पैलेस वॉक ये उनकी जो प्रसिद्ध कायरो ट्रिलॉजी है उसका पहला भाग है, 1956 में आया था।
और कहानी का समय वो भी बड़ा दिलचस्प है।
जी, 1917 से 1919 काहिरा, मतलब पहला विश्व युद्ध खत्म होने को है, ब्रिटिश हुकूमत है और मिस्र में वो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है। 1919 की क्रांति की आहट है।
तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि अल जवाद परिवार के जरिए उस वक्त के मिस्र को, वहां की पितृसत्ता, परंपरा, आधुनिकता की खींचतान, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, ये एक बंद दरवाजे की कहानी है पर इसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है।
चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी के केंद्र से, अल जवाद परिवार और उसके मुखिया अल सैयद अहमद अब्दुल जवाद। ये किरदार कैसा है? बड़ा पेचीदा लगता है।
अल सैयद अहमद अब्द अल जवाद, हाँ वाकई बहुत ही जटिल और विरोधाभासी किरदार है। महफूज ने बड़ी बारीकी से बनाया है इनको। दिन में देखिए तो घर के अंदर उनका रुतबा किसी बादशाह जैसा।
बिल्कुल,
सख्त मजहबी उसूलों का दिखावा, घर की औरतों पर पूरा नियंत्रण। पत्नी अमीना, बेटियां खदीजा, आयशा, सब उनके डर में जीती हैं।
घर से बाहर निकलना भी मना है उन्हें।
हाँ बिल्कुल मना, उनका खौफ मतलब घर की हवा में महसूस होता है, लेकिन रात होते ही ये इंसान बिल्कुल बदल जाता है।
अच्छा,
दोस्तों के साथ महफिलें, शराब, संगीत, नाच गाना, औरतों से ताल्लुकात, मतलब एक जिंदा दिल, शौकीन मिजाज आदमी।
तो ये जो दोहरापन है, ये पाखंड, यही कहानी का एक मुख्य बिंदु है।
हाँ बिल्कुल, ये केंद्रीय तनाव है और ये सिर्फ एक आदमी का नहीं है, ये उस समाज का भी आईना है जहां बाहर कुछ और अंदर कुछ और चलता है।
और इसी वजह से ये घर, ये परिवार उस समय के मिस्र का एक छोटा रूप, एक माइक्रोकॉस्म बन जाता है ना।
सही कहा, बिल्कुल, जैसे अल सैयद घर पर राज करते हैं कोई सवाल नहीं पूछ सकता।
हाँ, उसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की छाया दिखती है।
बिल्कुल, और घर के अंदर की घुटन, वो दबी हुई इच्छाएं, वो जैसे परंपरा और आजादी की चाहत के बीच फंसा हुआ मिस्र ही है।
ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं,
नहीं नहीं, ये उस वक्त के मिस्र का जीता जागता रूपक है। पिता का शासन बाहरी गुलामी का प्रतीक है और घर के लोगों की चुप्पी, खासकर औरतों की, छोटे बेटे कमाल की, वो आम मिस्री की छटपटाहट है जो पहचान और आजादी खोज रहा है।
महफूज की शैली भी कमाल की है, वो यथार्थवाद, लिटरली रियलिज्म जिसे कहते हैं।
जी हाँ, काहिरा जैसे जिंदा हो उठता है, गलियां, बाजार, घर का माहौल सब आंखों के सामने आ जाता है।
अच्छा, इस माहौल में बाकी परिवार के सदस्य कैसे हैं? माँ अमीना से शुरू करते हैं, उनकी क्या भूमिका है?
अमीना वो उस दौर की आप कह सकती हैं पारंपरिक पत्नी और माँ हैं। जिंदगी घर की चारदीवारी में, पति की सेवा, बच्चे, मजहब, पति के लिए श्रद्धा ऐसी कि जैसे वो कोई दैवीय शक्ति हो।
उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती।
बिल्कुल नहीं, वो घर में कैद हैं लेकिन उनके अंदर एक ममता है और एक मासूम सी इच्छा भी है बाहर की दुनिया देखने की, इमाम हुसैन की मस्जिद जाने की। वो सब सहती हैं, चुप रहती हैं, पर उनकी चुप्पी में भी एक कहानी है।
और बच्चे, वो इस माहौल पे कैसे रिएक्ट करते हैं? पीढ़ी का अंतर दिखता होगा।
हाँ, बच्चों में ये फर्क साफ है। सबसे बड़े यासीन, वो अल सैयद की पहली पत्नी से हैं, वो अपने पिता के कह सकते हैं रात वाले मिजाज की परछाई हैं, लापरवाह, इच्छाओं के गुलाम।
अच्छा,
उनकी हरकतें जैसे नौकरानी से छेड़छाड़ की कोशिश, वो परिवार के लिए शर्मिंदगी लाती हैं और पिता के पाखंड को और उभारती हैं। फिर है फहमी, दूसरे बेटे, वो बिल्कुल उलट, आदर्शवादी, पढ़े लिखे, कानून के छात्र। उनके दिल में देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, वो कहानी के राजनीतिक पहलू के केंद्र में है।
और सबसे छोटे कमाल,
कमाल वो बहुत संवेदनशील है, खामोश रहता है, सब देखता है, महसूस करता है। पाठक अक्सर उसी की नजरों से कहानी देखता है। कहते हैं कि कमाल में महफूज ने खुद अपने बचपन को देखा है।
और बेटियां खदीजा और आयशा?
खदीजा बड़ी हैं, थोड़ी साधारण सी, जबान की तेज पर प्रैक्टिकल हैं। आयशा छोटी है, बहुत खूबसूरत, नाजुक सी, ख्वाबों में खोए रहने वाली, पिता की लाडली भी।
और वो दोनों उस समाज में औरतों की सीमित दुनिया को दिखाती हैं।
हाँ बिल्कुल, उनका भविष्य, उनकी पहचान सब शादी पर टिका है। हर बच्चा इस माहौल से अपने अपने तरीके से जूझ रहा है, कोई दबकर, कोई छिपकर, और कोई आगे चलकर खुलकर।
कहानी की जो रोज की एक लय है, उसमें पहला बड़ा मोड़ कब आता है, घर की शांति कब भंग होती है?
वो मोड़ आता है अमीना के एक बहुत ही, कह सकते हैं, मासूम से विद्रोह से। उनके मन में सालों से एक इच्छा थी इमाम हुसैन की मस्जिद जाने की।
हाँ, आपने बताया था।
तो एक दिन जब पति घर पर नहीं थे, वो हिम्मत करके बेटियों के साथ चुपके से निकल जाती हैं।
ये उनके लिए बहुत बड़ी बात रही होगी।
हाँ, ये सिर्फ बाहर जाना नहीं था, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम तोड़ना था, अपनी दुनिया की सरहद लांघना था। पर होता क्या है कि रास्ते में गाड़ी से टक्कर लग जाती है, चोट आती है और भेद खुल जाता है।
ओहो।
और तब अल सैयद अहमद का असली रूप सामने आता है। उन्हें पत्नी की चोट की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है अपनी इज्जत की, अपने हुक्म की।
बड़ा कदम था। इसका असर क्या हुआ फिर?
ये कहानी का एक अहम मोड़ है। हालांकि बाद में अमीना घर लौट आती हैं, बच्चों के कहने पर, जरूरत के चलते, लेकिन ये घटना एक निशान छोड़ जाती है। अमीना को एहसास होता है कि उनकी दुनिया कितनी नाजुक है, पति का गुस्सा कितना भयानक, बच्चों के मन में पिता का डर और माँ की लाचारी और गहरी हो जाती है।
घर की वो झूठी शांति भंग हो जाती है।
हाँ, वो नकाब उतर जाता है और पता चलता है कि ये व्यवस्था कितनी दमनकारी है, ये पितृसत्ता का क्रूर चेहरा है।
तो ये पहली दरार पड़ी, इसके बाद अगली पीढ़ी के जीवन में क्या होता है?
बाहरी दुनिया कैसे असर डालती है?
अगली पीढ़ी अपनी राहें बना रही है या ढूंढ रही है, और वो राहें आसान नहीं है। यासीन की हरकतें जारी रहती हैं, पिता शादी कराकर उसे सुधारना चाहते हैं पर वो नाकाम रहती है।
मतलब पिता का दोहरापन बेटे में भी दिख रहा है। हाँ, अनजाने में ही सही, पर दिखता है। बेटियों के लिए भी बदलाव है। खदीजा और आयशा की शादियां होती हैं एक ही अमीर घर में शौकत परिवार के दो भाइयों से।
उनका घर से जाना माँ के लिए मुश्किल रहा होगा।
हाँ, अमीना के लिए घर खाली हो जाता है। ये शादियां परिवार को बाहर से तो जोड़ती हैं, लेकिन ये भी दिखाती हैं कि उस दौर में लड़कियों की शादी कैसे एक सामाजिक आर्थिक समझौता ज्यादा थी, उनकी अपनी इच्छाएं मायने नहीं रखती थी।
वो घर की जालीदार खिड़कियां, मशराबियां।
हाँ, वो प्रतीक हैं जिनसे वो बाहर देख सकती थीं पर खुद नजर नहीं आती थीं, कैद का प्रतीक।
और फिर घर की दुनिया और बाहर की दुनिया का टकराव शुरू होता है। राजनीति घर में कैसे आती है, फहमी के जरिए।
हाँ, ये उपन्यास का बहुत ही ताकतवर हिस्सा है। बाहर माहौल बदल रहा है, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुस्सा है, आज़ादी की मांग है। फहमी जो कानून पढ़ रहा है, आदर्शवादी है, वो इस आंदोलन से जुड़ जाता है
चुपके से।
हाँ, शुरू में छुपाता है पिता से, वो क्रांतिकारी पर्चे छापता है, बांटता है, मीटिंगों में जाता है, जानता है पिता को मंजूर नहीं होगा।
और टकराव होता है पिता पुत्र में।
बिल्कुल, जब अल सैयद को पता चलता है, वो सख्ती से रोकते हैं। उन्हें बेटी की सुरक्षा की चिंता तो है, पर उससे ज्यादा वो व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं।
वो खुद एक व्यवस्था के प्रतीक हैं।
सही कहा। और यही फहमी पहली बार खुलकर पिता के सामने आता है। कहता है, वतन का कर्ज घर से बड़ा है। वो कहता है कि इंसान का असली परिवार उसका वतन होता है।
ये सिर्फ बाप बेटे का झगड़ा नहीं रहा फिर?
नहीं, ये एक पीढ़ी का दूसरी से, एक सोच का दूसरी से टकराव है।
और फिर
1919 में क्रांति भड़क उठती है, मिस्र की क्रांति। कायरा की गलियां मैदाने जंग बन जाती हैं।
मारेबाजी, गोलियां।
हाँ, और अल जवाद परिवार बंद दरवाजों के पीछे सहमा हुआ, बाहर का शोर अंदर की खामोशी को चीर रहा है। इतिहास अब दरवाजे पर था।
इस क्रांति का नतीजा क्या होता है, कहानी का क्लाइमैक्स क्या है, खासकर फहमी के साथ क्या होता है?
शुरू में लगता है क्रांति कामयाब हो रही है। राष्ट्रवादी नेता साद जगलूल, उन्हें रिहा कर दिया जाता है।
वाह,
पूरे देश में जश्न होता है। फहमी घर लौटता है तो हीरो जैसा स्वागत होता है उसका।
पिता भी गर्व महसूस करते हैं।
हाँ, शायद दबे मन से, पर करते हैं। एक उम्मीद बंधती है, लगता है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी का सबसे दुखद मोड़ तब आता है।
हाँ।
जब फहमी घर वालों के मना करने पर भी एक और प्रदर्शन में चला जाता है।
हाँ।
और वहां अंग्रेज सिपाही गोली चला देते हैं, फहमी मारा जाता है।
ओ।
फहमी की मौत, इसका परिवार पर क्या असर हुआ होगा, कल्पना करना भी मुश्किल है।
जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो।
पूरा परिवार बिखर जाता है। अल सैद अहमद, वो मजबूत रोबदार इंसान, टूट जाते हैं। उनका सारा अधिकार, सारा गुरूर, उस दुख के सामने कुछ नहीं रहता।
और अमीना जो हमेशा चुप रही।
अमीना वो पहली बार चीखती हैं। जिंदगी भर का दबा हुआ दर्द, गुस्सा, शिकायत सब बाहर आ जाता है। वो खुदा से सवाल करती हैं, पति के सामने फट पड़ती हैं। ये एक माँ का, एक औरत का विस्फोट था। उपन्यास का अंत खुशी में नहीं बल्कि गहरे शोक और सन्नाटे में होता है।
लेकिन कहानी खत्म नहीं होती।
नहीं, महफूज दिखाते हैं कि जिंदगी रुकती नहीं। आखिरी पन्नों में पता चलता है कि खदीजा के बेटा हुआ है, आयशा भी माँ बनने वाली है। परिवार का चक्र फिर चलेगा, जिंदगी आगे बढ़ेगी। पर फहमी की शहादत, क्रांति की यादें, इनका साया हमेशा रहेगा।
ये उम्मीद और नाउम्मीदी का अजीब संगम है।
बिल्कुल।
तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये उपन्यास किन मुख्य विषयों पर सोचने को मजबूर करता है? पहला तो पितृसत्ता और उसका पाखंड साफ है।
हाँ बिल्कुल, अल सैयद का दोहरा जीवन, घर का माहौल, ये सब। फिर औरतों की स्थिति, उनकी सीमाएं, घर उनके लिए कैदखाना भी है, पनागा भी।
अमीना की घुटन, बेटियों के सीमित विकल्प।
सही कहा। और परिवार का राष्ट्र के रूपक होना, ये भी बहुत अहम है।
पिता का शासन, बच्चों की प्रतिक्रियाएं, ये जैसे औपनिवेशिक शासन और आजादी की लड़ाई के रास्ते दिखाते हैं।
हाँ, और परंपरा बनाम आधुनिकता का संघर्ष, पीढ़ियों का टकराव, और सबसे ऊपर मुझे लगता है आजादी की तलाश। हर किरदार की अपनी लड़ाई है।
अमीना की कुछ घंटों की आजादी, यासीन की नैतिक बंधनों से, फहमी की देश की आजादी।
जी, और महफूज जिस तरह हमें किरदारों के मन में झांकने देते हैं, वो सर्वज्ञ कथावाचक वाली शैली।
हाँ, उससे हम उनकी अंदरूनी कश्मकश को महसूस कर पाते हैं, उनके डर, उनकी उम्मीदें।
अजान की आवाज का बार बार आना, वो भी एक प्रतीक है, मजहब और अमल के बीच का फर्क दिखाती है।
ये सब पढ़ते हुए या सुनते हुए पाठक पर कैसा असर पड़ता है, क्या महसूस होता है?
ईमानदारी से कहूं तो भारी लगता है कई बार। वो घुटन महसूस होती है, पिता का डर, औरतों की बेबसी,
गुस्सा भी आता है।
हाँ, अन्याय पर गुस्सा आता है, पाखंड पर निराशा होती है, फमी जैसे किरदारों से हमदर्दी होती है।
और उसकी मौत, वो बहुत दुख देती है, जैसे कोई सपना टूट गया हो, व्यक्तिगत भी और राष्ट्रीय भी।
तो ये उपन्यास हमें कई चीजों पर दोबारा सोचने को कहता है। परिवार, सत्ता, इज्जत, फर्ज, इन सब के मतलब क्या हैं?
बिल्कुल।
और ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या जुल्म और विद्रोह का ये चक्कर कभी टूटेगा? जवाब आसान नहीं है।
तो अंत में ये कहानी हमें शायद ये सिखाती है कि बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की कीमत अक्सर आम लोग चुकाते हैं अपनी निजी जिंदगियों में।
हाँ, और ये भी कि हर तरह के दमन के बावजूद इंसान की गरिमा और आजादी की चाहत मरती नहीं है, वो जिंदा रहती है किसी न किसी शक्ल में।
अनिवार्य समापन पंक्ति, ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।